मसीह में बुलाए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पहुंच गए हैं क्लास नंबर 8, जिसका नाम है पांचवां महान साम्राज्य। पांचवां महान साम्राज्य। तो आज की स्टडी में हम ये देखेंगे, आज की स्टडी में हम ये बड़ी मूरत देखेंगे और चार जंतु देखेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में। ये राज्य क्या है, ये राज्य कब आएगा और ये राज्य इस धरती पे कैसे स्थापित होगा, ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो आज की पढ़ाई में हम देखेंगे, क्योंकि ये बाइबल का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खास करके नए नियम में। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या प्रचार कर रहा था, नहीं यूहन्ना बपतिस्मा वचन पढ़ेंगे मती 3:1-2, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। मती 3:1-2।
उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है।
तो मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य
निकट आ गया।
ये प्रचार कौन कर रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब प्रचार करना शुरू किया तो क्या बोले, मती 4:17।
उस समय से यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया।
प्रभु के प्रचार का आरंभ किस चीज से होता है, स्वर्ग का राज्य। ये स्वर्ग के राज्य का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल में और जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है आज। प्रभु यीशु मसीह ने 39 दृष्टांत बोले और जिसमें से 7 दृष्टांत राज्य के बारे में है। मती 13 राज्य के बारे में है, वो 7 के 7 हम पढ़ेंगे अलग विषय में, ठीक है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को प्रार्थना भी सिखाई, उसमें भी क्या बोला, प्रार्थना करो किस चीज के लिए, तेरा राज्य, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन। और जहां भी प्रभु जाते थे वहां पे राज्य की खुशखबरी का समाचार फैलाते थे। पढ़ लो मती 9:35।
यीशु सब नगरों और गांव में फिरता और उसके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता,
देखो,
और इस प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा।
तो प्रभु यीशु मसीह का मिशन था प्रचार करना किस चीज का, राज्य का खुशखबरी।
9:35।
तो अपने प्रेरितों को भी प्रभु ने क्या आज्ञा दी, मती 10:7। आप 11 पढ़ रहे थे शायद, 10:7 पढ़ो अभी, 10:7।
और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है।
स्वर्ग का राज्य
निकट आ गया।
तो स्वर्ग के राज्य का बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है बाइबल में। खुद प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, प्रेरितों को भी बोला, लेकिन ये क्या हो गया कि आज इस राज्य के बारे में ना तो ज्यादा बात की जाती है कलीसियाओं में, ना ईसाइयों में कोई बात करता है परमेश्वर के राज्य की। बात यही होती है कि ईसाई तो स्वर्ग में चले जाएंगे, जो अविश्वासी है वो नाश हो जाएंगे, कोई स्वर्ग के राज्य के बारे में बात ही नहीं करता है। है ना। कोई स्वर्ग के राज्य में बात ही के बारे में बात ही नहीं करता है, किसी को पता नहीं है कि वो राज्य इस धरती पे आएगा, किसी को पता नहीं है वो राज्य इंडिया में आएगा, किसी को पता नहीं वो राज्य जलंधर में आएगा, किसी को पता नहीं है वो राज्य एमपी में आएगा। लेकिन ये सच है, पूरी धरती पे परमेश्वर का राज्य होगा, बाइबल में लिखा है ये बात। तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है, वो आज पूरी हो रही है, लेकिन होगी, आपको विश्वास है होगी? बहुत जल्दी होगी, है ना। हाँ, तो ये कारण पता क्या है क्यों नहीं स्वर्ग के राज्य के बारे में बात की जाती? उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं जिसको गलत समझा गया, ठीक है, लूका 17 का 20 और 21 जी, लूका 17 उसका 20 और 21।
जब फारसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज दृढ़ रूप से नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है।
तो इस वचन को पहले मैं बोलता हूँ समझा क्या गया। इस वचन को आज के जो टीचर्स हैं वो ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या बोला कि परमेश्वर का राज्य लोगों के दिलों में है, तुम्हारे दिलों में है। वो कोई इस धरती पर राज्य नहीं होगा, वो दिलों में होगा। इसलिए आज बहुत बड़ा, बहुत से मिशनरी निकल चुके हैं कि जब तक ये संसार बदलता नहीं है, जब तक सब क्रिश्चियंस नहीं बनते हैं, तब तक मसीह का, परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। ये समझते हैं, इसलिए मिशनरी हमें सब लोगों को बदलना है, हमें सब लोगों को बदलना है, क्योंकि जब तक इनके दिल नहीं बदलेंगे तब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। इस वचन को ऐसा लेके बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखो, प्रभु यीशु मसीह किन से बात कर रहे थे? फरीसियों से। तो फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते थे? साफ साफ क्या बोलते थे? कपटी। क्या बोलते थे? कपटी बोलते थे ना। वचन पढ़ोगे मत्ती 23 का 27? ऐसे रख लूं ब्रदर, कोई माइंड तो नहीं?
समान हो जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है।
अगर सुनिए, अगर प्रभु यीशु मसीह साधारण भाषा में फरीसियों से ये बात कर रहे थे कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे दिलों में है, तो क्या वो सही बात है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही इनको क्या बोलते हैं? कपटी हो, तुम दिखाने वाले लोग हो। तो प्रभु यीशु मसीह क्या ये बोल रहे थे? अरे हे फरीसियों, तुम्हारे दिलों में है परमेश्वर का राज्य। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था, ये दिलों की बात हो रही थी। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब पता क्या था? प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो बहुत बड़ा बैंड बाजा, बादल, बारिश, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और लोगों जब आ जाएगा ना, लोगों, अरे हम तो परमेश्वर के राज्य में हैं, ऐसा होगा। ऑलरेडी है, हाँ, किसी को नहीं पता होगा। गुप्त रीति से राज्य आ जाएगा, जब आ जाएगा, आने के बहुत देर बाद जब प्रकट होगा, तो हम तो परमेश्वर के राज्य में हैं, ऐसी होगी रिएक्शन। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि बहुत बड़ी गड़गड़ाहट नहीं होएगी, बैंड बाजा या आकाश में कोई तुरी फूकी नहीं जाएगी, या बादलों के साथ कोई उड़ता आएगा और बोलेगा परमेश्वर का राज्य आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। कामों से प्रकट होगा, कामों से प्रकट हो जाएगा। तो तुम बोलोगे परमेश्वर का राज्य तो आ चुका, ऐसा होगा। परमेश्वर के राज्य में होंगे लोग और लोग बोलेंगे अरे परमेश्वर का राज्य तो आ गया है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का सचमुच एक राज्य होगा जो इस धरती पे होगा। जो कहाँ होगा? इस धरती पे। ये राज्य इस धरती पे बहुत पहले था, बहुत पहले था। कब? अदन की वाटिका में। उस राज्य में परमेश्वर ने एक राजा स्थापित किया। वो कौन था राजा? आदम। पढ़ते हैं ना उत्पत्ति में परमेश्वर ने उसको क्या बोला, सारी धरती पे क्या कर तू? राज्य कर। और यही राज्य के बारे में जो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 8:5, उसमें क्या बोलता है कि उसको दूतों से थोड़ा कम बनाया गया और उसको महिमा का मुकुट पहनाया गया। पढ़ो पढ़ो।
क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा।
महिमा और प्रताप का मुकुट यानी धरती का राजा आदम। लेकिन ये राजा बड़ी जल्दी अपना मुकुट भी खो दिया और राज भी खो दिया। हवा धोखे में आई। आदम ने फैसला किया कि मैं हवा के पीछे चलूंगा। तब से आदम और उसका परिवार गुलाम हो गए किसके? शैतान और उसके दूतों के। और शैतान ने बड़ी कुटिलता और चतुराई से वो राज्य जो परमेश्वर ने आदम को दिया था उस पे कंट्रोल कर लिया। लगभग 6000 साल से कंट्रोल किया हुआ है पहले और दूसरे संसार में। राज धरती पर राज्य करने का अधिकार किसको दिया? परमेश्वर ने। लेकिन आदम तो गुलाम हो गया किसका? शैतान और उसके दूतों का। अभी राज्य काम करना शुरू कर दिया शैतान। शैतान राज्य करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा आजकल स्थिति क्या है? एक इंसान दूसरे इंसान पे राज्य कर रहा है, जैसे ब्रिटिश लोगों ने किया, आज हम भी करते हैं, इस दुनिया में भी देखते हैं, है ना? राज्य करता है ना, करते हैं ना? लेकिन ये परमेश्वर की योजना कतई नहीं थी, कतई नहीं थी। परमेश्वर ने अभी इस चीज को अनुमति दी है किसी मकसद के तहत। वो क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन वो राज्य जो परमेश्वर का राज्य था, परमेश्वर ने राजा बनाया आदम को, वो खो गया। उसके बाद भी परमेश्वर ने अपना राज्य स्थापित किया। कहाँ पे? इज़राइल में। कहाँ पे किया? इज़राइल में। क्योंकि परमेश्वर बोलता है धरती के सारी जातियों से मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ तुम हो मेरी प्रजा इज़राइल। इज़राइल पे परमेश्वर की बहुत कृपा रही है। तो इज़राइल का जो राजा होता था ना, वो पता किसके सिंहासन पे बैठता था? पढ़ो पहला इतिहास 29:23। पहला इतिहास 29 उसका 23।
तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा।
अंडरलाइन करो किसके सिंहासन पे?
अपने पिता के।
पिता
के, अपने पिता दाऊद के स्थान पर, दाऊद के
स्थान पर किसके सिंहासन पे बैठा?
राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा।
परमेश्वर का सिंहासन।
और समृद्धशाली हुआ और इज़राइल उसके अधीन हुआ।
बस बस। तो ये जितने इज़राइल के राजे थे ये पता किसके सिंहासन पे बैठते थे? परमेश्वर के सिंहासन पे।
तो परमेश्वर कहाँ बैठे?
अभी परमेश्वर को बैठने के लिए सोफा थोड़ी चाहिए होगा। कहने राज्य का मतलब होता है, बैठने का मतलब होता है अधिकारी, जो अधिकारी है। परमेश्वर तो स्वर्ग में ही है, लेकिन परमेश्वर चलाते थे अपना राज्य, ठीक है, अपने सिंहासन को चलाते थे, अपना अधिकार चलाते थे, कहां पे? इसराइल में। अंतिम राजा राजा जेदकिया जो जब गिरा तो वो भी परमेश्वर का राज्य खत्म हो गया, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लो, हिजकिएल, हिजकिएल 21 का 25 से लेके 27 तक, 25 से लेके 27 तक। इक्कीस का 25 27। जी जी 21 का 25 से 27। पच्चीस से लेके 27, 21 का 21वां अध्याय चैप्टर।
तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की, उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला, वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं।
नहीं 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 नहीं,
ठीक है, 21 और 22 का ऐसा भी है।
25 से 27 तक। अच्छा, हे इसराइलियों ना, हे इसराइल, दुष्ट प्रधान तेरा दिन आ गया है।
हे इसराइल के दुष्ट प्रधान
तेरा दिन आ गया है।
इसराइल के दुष्ट राजा, प्रिंस लिखा, प्रिंस ऑफ इसराइल, तेरा दिन आ गया है। आगे,
अधम के अंत का समय आ पहुंचा है।
जी आगे,
तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे, वह गेहूं का प्योर नहीं रहने का, जो नीचा है,
जो मेहमा दी है तुम्हें वो हटा दो। हाँ,
जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर।
हाँ, बर्बादी बर्बादी बर्बादी, तीन बार पढ़ो पढ़ो।
मैं उसको उलट दूंगा।
हाँ,
और उलट उलट कर दूंगा।
उलट दूंगा, तीन बार है। हाँ,
और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वह ऊंचा हुआ रहेगा।
तो ये देखो, परमेश्वर ने देखा इसराइल का राजा, जो अंतिम राजा था जेदकिया, उसमें बोला, ये दुष्ट, तेरा धर्म का अंत आ गया है। और परमेश्वर ने इसराइल में राजाओं का अंत किया और इसराइल को पे अनुमति दी अन्य जातियों को राज करने के लिए, जिसमें बाइबल में जिसे बोलते हैं लूका 21 का 24 में अन्य जातियों का समय।
एंड
दाओ प्रोफेन विकेट प्रिंस ऑफ इसराइल, हाँ, डेज इज कम, या लुका 21 का 24,
द टाइम ऑफ योर फाइनल,
यस,
पनिशमेंट, दो से द लॉर्ड गॉड रिमूव द टर्गन एंड टेक ऑफ द क्राउन,
या
ही शैल नॉट रिमेन एज दे आर एक्सल्ट दैट व्हिच इज लव एंड ड्रीम लव दैट व्हिच इज एक्सल्टेड।
मतलब एग्जॉल्ट हिम दैट इज लो एंड अबेस हिम, मतलब जो ऊंचा है उसको नीचा कर, जो नीचा है उसको ऊंचा कर। नीचा अभी कौन था? अन्य जाति। अन्य जाति अभी राज्य करेगी और तुम जो ऊपर थे तुम नीचे होगे। ये पढ़ लो, ये लूका 21 का 24,
वे तलवार की कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोग में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो,
अन्य जाति, अन्य जाति को अनुमति दे दी इसराइल पे राज्य करने की। अगर आपको पता हो, हर देश में अपने बड़े बड़े शहरों में ना, इवन बॉम्बे वगैरह, इसराइली यहूदी सिनोगॉग्स में रहते हैं, अभी भी रहते हैं। सिनोगॉग मतलब क्या था, जब 70 ईस्वी में प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने शब्द बोले मत्ती 23:37-38 में, तुम्हारा देश तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, तो 70 ईस्वी में इजराइल देश देश ना रहा, इसके लोग तितर बितर हो गए, कोई कोई हाँ कोई उधर रशिया चला गया, कोई अमेरिका चला गया, सारे देशों में ऐसे बट गए। तो यरूशलम को बोला तुम अन्य जातियों के पैरों के तले रौंदे जाओगे, कब तक? जब तक वो नहीं आ जाता जिसका अधिकार है। वो हिजकियल वाले में यही बोला ना, मैं पलटा रहेगा जब तक वो नहीं आ जाता जिसका अधिकार है। हाँ, अभी ये कौन है जिसका अधिकार है? ये है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा बन के एक राज्य लेके आएंगे जिसमें वो राजा होंगे। कब? पहले आगमन में तो आ चुके, कब आएंगे? अभी दूसरे आगमन में अपने साथ एक राज्य लेके आएंगे। दूसरे आगमन में प्रभु होगा राजा,
एंड में ना, एंड होगा।
यस, ये दूसरे संसार के अंत, उसे दूसरा आगमन बोलते हैं प्रभु का। दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह तो एक राज्य लेके आएंगे। वो राज्य होगा परमेश्वर का राज्य, जिसे इस धरती पे सर स्थापित करेंगे। एंड नहीं होगा वो, वो असली शुरुआत होगी।
दूसरे दूसरे संसार का अंत और परमेश्वर का सेकंड राज्य शुरू।
परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर का राज्य शुरू, सेकंड नहीं राज्य, तीसरा संसार शुरू,
तीसरा संसार शुरू हो
जाएगा। ठीक है, लेकिन यहूदी इस बात को नहीं समझ पाए। वो समझते थे, वो इंतजार कर रहे थे। क्यों इंतजार, क्या क्यों इंतजार कर रहे थे? क्योंकि पुराने नियम में बहुत सी गवाहियां प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी थी, इसीलिए उनको पता था ना। वो जो पंडित लोग थे, उन्होंने देख लिया कि वहां पे प्रभु सूर्य चंद्रमा रुक गया उधर, वो इंतजार ही में थे। किसके? हमारा मसीहा आने वाला है। हमारा कौन आने वाला है? सामरी औरत भी क्या बोलती है, हमें पता है हमारा मसीहा आने वाला है, मसीहा सामने खड़ा था। लेकिन वो क्या समझते थे? जब हमारा मसीहा आएगा ना, उसके कंधों पे सरकार होगी, यानी राज्य होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था मसीहा पहले आगमन में नहीं, दूसरे आगमन में राज्य के साथ आएगा। ये पढ़ लो, यशाया 9:6 में जिसमें लिखा है उसके कंधों पे सरकार होगी।
क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा।
तो वो सोच रहे थे जब हमारा मसीहा आएगा उसके तो कंधे पे सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी। तो वो सिर्फ ढूंढ रहे थे कि धरती पे हो, वो ढूंढ रहे थे हमारे इसराइल में से कोई ऐसा आए, वो ऐसा जो आएगा वो धरती पे राज बहाली करेगा। तो इसराइली लोग सिर्फ ढूंढ रहे थे धरती का राज्य। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जब पिलातुस के सामने लेके आए, तो पिलातुस को क्या बोला प्रभु ने? मेरा राज्य इस जगत का नहीं, दूसरे नहीं। राज्य इस जगत का मतलब प्रभु यीशु मसीह दूसरे संसार में आए, बोले मेरा राज्य दूसरे संसार का नहीं आएगा, मेरा राज्य। उसको नहीं बताया, वो बेचारा क्या समझता, पिलातुस को इतना क्या था पता? ठीक है, उसको ये नहीं। तो इसराइली सिर्फ ढूंढ रहे थे हमारा मसीहा तो इसराइल में आएगा और शक्तिशाली होकर राज्य करेगा। इसीलिए आपको पता यहूदी भी इसी ये जो सॉरी चेले थे,
एक बात तुझे, वो कंधे पर जो बोले थे वो क्या समझते थे, क्या स्टार लगा होगा ऐसा?
नहीं, स्टार नहीं, कंधे के मतलब, कंधे का मतलब के उसके पास सरकार होगी। ठीक है, कंधे पे ये सारा चिन्हात्मक है, इसको साधारण नहीं कि कंधे पे कुछ नहीं। तो जो चेले थे, चेलों को भी नहीं पता था ये बात, चेले भी यही समझते थे कि प्रभु प्रभु यीशु मसीह तो धरती पे राजा होगा और हम उसके राज्य में तो बड़े बड़े अहदे रखने वाले बंदे होंगे, इसलिए एक बार लड़ना शुरू कर दिए, बोलता दाएं मैं बैठूंगा वह बाएं ये बैठेगा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिली ना तब तक उनको भी नहीं पता था, लड़ना शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा यीशु मसीह राजा होगा और हम तो ऐसा होंगे। तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह टेबल पे बैठे और जब प्रभु यीशु मसीह ने बातें करनी शुरू की कि मैं तो मरने जा रहा हूँ, सब ये क्या बातें कर रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। वो सोच रहे थे ये राजा होगा, राम तो इसके साथ वो होंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बताना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने समय से पहले कुछ नहीं बताया। किस रात बताया? जिस दिन पकड़ाए जाना था, हाँ उस दिन जाके सब बातें बताई। तो इसलिए ये भी याद रखना, हमें सच्चाई जब बतानी है तो बड़े ध्यान से बतानी है, कब कौन सा सही वक्त है, इंजरी ना, चोट ना लग जाए किसी सामने वाले को, ठीक है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसी में ही बोलते हैं, मेरे पास बातें तो बहुत है तुम लोगों को बताने के लिए, लेकिन मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सारी सच्चाई में आगे लेके जाएगा। तो यहूदी सिर्फ सोच रहे थे कि धरती पे राजा आएगा, धरती पे राजा होगा मसीह, हमारा मसीह है। तब से वो तो चलो धरती का, ईसाइयों को की भी समझ बुझ चुकी है। ईसाई सिर्फ क्या देख रहे हैं? स्वर्ग, सिर्फ स्वर्ग, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग बस। दोनों ही गलत है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा, स्वर्ग और पृथ्वी। वो हमने देख लिया, हवा में आत्मिक राज्य कौन करेगा? प्रभु और उसकी कलीसिया। धरती पे राज्य कौन करेगा? अब्राहम, इसहाक, यकूब। लेकिन इनको चलाएगा कौन? प्रभु यीशु मसीह, जैसे आज शैतान चला रहा है। लेकिन किसी को समझ नहीं सब। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात सत्य है कि इस धरती पे प्रभु का राज्य आएगा, और ये परमेश्वर ने प्रकट भी किया। कैसे आएगा ये प्रकट किया, और कब आएगा ये भी बताया बाइबल में, डेट भी बताई, और बताइए डेट तक बताई हुई है। चलो आज थोड़ा मैं बताऊंगा, सब कुछ तो नहीं बताऊंगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इनके इन बातों को समझने के लिए आज हम बड़ी बड़ी दो भविष्यवाणियां पढ़ेंगे जो दानियल की किताब में है, दानियल दूसरा और सातवें अध्याय में परमेश्वर ने यह बात प्रकट की दो सपनों के द्वारा। एक सपना तो दिखाया राजा नेबुकदनेज़र, बाबुल का राजा था, और दूसरा सपना दिखाया परमेश्वर के ही भविष्यवक्ता दानियल को। ये दोनों सपने लगभग 2600 साल पुराने हैं। तो मैं बताता हूं, वचन बताता हूं, 2600 साल पुराने हैं जिसके बारे में परमेश्वर राज्य की बात कर रहा है, और कब ये राज्य आएगा ये भी बता रहा है परमेश्वर। आज हम कहां हैं ये भी पता चल जाएगा। दानियल 2:1-11 तक पढ़ेंगे।
अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेज़र ने ऐसा सपना देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, सोने और कसाबी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका सपना बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक सपना देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि सपने को कैसे समझूं। तब कसादियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को सपना बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसादियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत सपना को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्ने को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्ना बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्ना तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चित जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है समय बढ़ाना चाहते हो, इसलिए यदि तुम मुझे सपना ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे, इसलिए तुम मुझे सपना बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। प्रसादियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ जिसने किसी ज्योतिषी या मंत्री या कसादी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके।
तो क्या कह रहे थे? तो राजा नेबुकदनेज़ार ने एक बड़ा भयानक सपना देखा और मन बड़ा व्याकुल हो गया, और सारे राज्य के समझदार कसादी पंडित सबको बुलाया। बोला, मैंने एक सपना देखा, सपना मुझे याद नहीं है, तुम लोगों को अभी वो सपना भी बताना है, अर्थ भी बताना है, नहीं बताओगे तो सब दुविधा में पड़ गए हैं। वो बोलते सपना बताओ, बोलता तुम लोग टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलेगा, पहले मुझे सपना बताओ फिर ही मैं जानूंगा तुम सही अनुवाद कर सकते हो। तो बड़ी अलग सी स्थिति पैदा हो गई, कौन बताए क्या सपना देखा उसने, किसको मालूम, और उसका अर्थ तो दूर की बात। राजा क्रोधित हो गया, राजा ने आज्ञा निकाल दी, सब खत्म कर दो मेरे राज्य में से, 12 में पढ़ लो, 12वां वचन भी पढ़ लो।
इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी,
आज्ञा निकाल दी, मार दो सबको। सारे राजा के जितने भी समझदार लोग थे, पंडित थे, सबको बोला खत्म कर दो। और जब ये इसका सेनापति ये करने के लिए निकला, दानियल और उसके 3 दोस्त उस समय मौजूद नहीं थे उस सभा में, क्योंकि दानियल और उसके दोस्त सभा में सिर्फ वो लोग गए जो हेड होते हैं, सभा में वो जाते हैं जो ओहदे वाले होते हैं, बाकी जो जैसे जूनियर रहते हैं वो नहीं गए। जैसे आर्मी की मीटिंग होती है, आर्मी की मीटिंग में ऑफिसर्स जाते हैं, है ना, तो इसी तरीके से दानियल भी एक सभा में मौजूद एक का चेला था, तो उस वक्त मौजूद नहीं था, तो जूनियर थे। जब ये बात सुनी, दानियल ने पूछा उससे, सेनापति से, पढ़ो 14-16 पढ़ लो,
14-16
जी,
14-16
हाँ।
तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अरियोक से, जो बेबीलोन के पंडितों को भाग करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अरियोक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अरियोक ने दानियल को उसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को सपने का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी अनन्या, मिसाइल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट किए जाए।
तो डैनियल ने अरियक को बोला कि हम कोशिश करेंगे, समय दिया जाए। और ये कहने के बाद डैनियल अपने दोस्तों के साथ प्रार्थना में लगे और परमेश्वर ने वो जो स्वप्न था वो डैनियल पे प्रकट किया एक दृश्य में। ठीक है, ये बात 17 से 19 तक देख लो।
तब यह भेद डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब डैनियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया।
देखो, तो प्रकट हो गया, धन्यवाद किया। तो डैनियल फिर क्या करता है? डैनियल राजा के पास जाता है अगले दिन, और राजा को सबसे पहले पता क्या बोलता है जाके, क्योंकि वो बड़ी महिमा की बात थी पूरे राज्य में। देखो, एक एक प्रॉब्लम, एक मुश्किल जिसका हल इतने बड़े बड़े जो बुद्धिमान नहीं कर पाए, वो डैनियल पे प्रकट हो रहा, कितनी महिमा की बात है। तो राजा के सामने जाके सबसे पहले पता क्या बोलता है? बोलता है इसमें मेरी कोई खासियत नहीं है, ये परमेश्वर की कृपा और उसने प्रकट किया। हाँ, क्या बोल रहे थे आप?
लेकिन राजा बोल रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं खुद भी नहीं जानता, तो अगर मान लो हम उसके ऊपर प्रकट भी करेंगे, वो सच्चाई बताएंगे, उसको कैसे पता लगेगा मैंने यही सपना
देखा? नहीं, उसके बताने के बाद उसको कुछ तो याद आ ही सकता है ना। तो दानियल 2 का 28 से लेके 30 तक पढ़ो।
2 का
इसी का 28 से 30।
परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या
होने वाला है। हाँ,
तेरा सपना और जो कुछ तुमने पलक पर पड़े हुए देखा वह यह है हे राजा, जब तुझको पलक पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, पर भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है।
तो देखो सारी बात बोलता, भेद मैंने नहीं, परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला है, परमेश्वर भेदों को बताने वाला है, मेरी इसमें कोई भी नहीं। तो मतलब ये अपने आप को दूसरे लोगों से, दूसरे पंडितों से, दूसरे बुद्धिमानों से अपने आप को ऊपर करने की कोशिश नहीं की। देखो इतनी नम्रता थी डैनियल में, हाँ परमेश्वर। तो देखो नम्रता की कितनी सुंदर उदाहरण सीखने को मिल रही है हमें। वो ऐसा समय था जिसमें जितना आदर चाहे उतना आदर मिल सकता था, क्योंकि इसके बाद नबूकदनेस्सर ने डैनियल को बहुत बड़ा ओहदा दे दिया था, और इसके साथ के तीनों दोस्तों को भी, इन्हीं तीनों दोस्तों को आग में भी फेंकता है वो नबूकदनेस्सर, वो अलग बात है। तो डैनियल को फिर सपना बताना शुरू किया, क्या सपने में देखा बोलता है 31 से लेकर 35 तक पढ़ लो।
हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति दिख पड़ी।
एक बड़ी मूरत दिखी, उसमें क्या था?
और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सर तो चौके सोने का था, उसकी छाती भी भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते ही देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लग कर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहे मिट्टी पीतल चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया, और धूप काल में खलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया।
तो यहाँ पे डैनियल बोलता तुमने एक बहुत बड़ी मूरत देखी जिसका सर सोने का, छाती और भुजाएं चांदी की, लाक ये पेट और जांगे पीतल की, टांगे लोहे की, और पैर लोहे और मिट्टी के। तो देखते देखते क्या हुआ बोलता, एक छोटा पत्थर वो पैर पे गिरता है और उसको चूर चूर कर देता है और राख जैसे बना के ऐसे उड़ जाती है जैसे पता ही नहीं गया, और वो छोटा पत्थर पहाड़ बनता है और पूरी धरती पे फैल जाता है। पहाड़ का मतलब है राज्य, ये नोट कर लेना, चिन्ह पहाड़ का मतलब है राज्य। तो ये क्या था सपना और इसका क्या है मतलब? तो दानियल फिर बताता है इसका अनुवाद 37 से लेके 40 तक।
हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य सामर्थ्य शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सर तू ही है,
सोने का सर
तू ही है,
तू है।
तेरे बाद एक राजा राज्य और उदय होगा,
तू नहीं रहेगा, अभी तेरे बाद एक और राज्य आएगा। हाँ।
जो तुझसे छोटा होगा।
हाँ।
फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा,
एक और आएगा। हाँ।
जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी,
सारी पृथ्वी आ जाएगी, और
राज्य लोहे के तुल
एक और आएगा, लोहे के तुल बहुत मजबूत होगा। हाँ।
लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और गिर जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर फिर जाएगा।
तो ये चार राज्य के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर, एक राज्य तू है, ये राज्यों की बात हो रही है। ये सोने का सर तू है, तेरा राज्य, इसके बाद एक और राज्य आएगा, उसके बाद एक और राज्य आएगा, उसके बाद एक और राज्य आएगा, ये चार राज्य। और इन चारों राज्यों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो सर जिसके लिए सोना बोला गया है, उस राज्य का नाम था बाबुल राज्य। बाबुल राज्य, नोट कर लीजिए ये बातें, आप बाद में नोट करना है बाद में, लेकिन ये नोट कर लीजिए। बाबुल का राज्य चला था कब? 606 बीसी से लेके 538 बीसी तक। बीसी मतलब वो मसीह से पहले वाला समय, मसीह से पहले वाला समय, जैसे आज हम चलते ना 1, 2, 3 आगे को जाता है, मसीह वाला पहले समय पीछे को चलता है। जैसे कहने का मतलब 606 से 538। तो ये राज्य था, ये मैं डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा, ये राज्य था 68 वर्ष का।
अच्छा।
तो पहला राज्य यानी जो हेड है, जो सोना है, उसका नाम है बाबुल राज्य। दूसरा राज्य छाती और बाजू यानी चांदी, वो था मीदो पर्शिया, मीदो पर्शिया राज्य 538 से लेके 331 बीसी तक, 207 साल का राज्य। उसके बाद पीतल पेट और ये थाई, ये था ग्रीक राज्य, ग्रीक राज्य 331 से लेके 107, ये टेबल है बाद में आप नोट कर लेना। उसके बाद चौथा है लोहे का, लेग्स और पैर, रोमन राज्य 160 बीसी से लेके 476 एडी तक। प्रभु यीशु मसीह किस राज्य में आए थे? यही रोमन राज्य, रोमन राज्य में आए थे प्रभु यीशु मसीह, रोमन सिपाही थे ना जब उस वक्त घुमा करते थे, है ना। तो पैर क्या है? पैर मिट्टी और लोहे के मिक्स, तो इसका मतलब क्या है? रोमन राज्य जो था उसने अपना रूप बदल लिया, पहले खाली लोहे का, बाद में लोहा और मिट्टी, रूप बदला। इस रूप का मतलब क्या था? 41 से लेके 43 तक पढ़ लो।
तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुमार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा रात बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्मल होगा। तूने लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे।
तो इसका मतलब क्या है? लोहा और मिट्टी, लोहे का मतलब है रोमन राज्य। तो राज्य जो होता था वो किस समाज पे होता था? सिविल, सिविलियंस पे राज। ये मिट्टी क्या है? मिट्टी, मिट्टी बहरूपिया है किसका? एक मिट्टी का गोला बना दो और पत्थर का गोला बना दो, रख दो, तो क्या लगेगा? बहरूपिया, एक आकार लगेगा। लगेगा दोनों पत्थर हैं, लेकिन वो जो मिट्टी वाला है वो क्या है? बहरूपिया, डुप्लीकेट, ओरिजिनल पत्थर है, लेकिन ये मिट्टी का बना है। तो ये मिट्टी का मतलब क्या है? धार्मिक राज्य। बिशप का जो, रोम का जो बिशप था, चर्च, यानी चर्च, चर्च ने क्या कर दिया? अभी ये राज्य जो था रोमन राज्य, ये क्या कर दिया? एक राजा था, एक बिशप, बिशप था, पोप था, दोनों मिलके क्या कर रहे थे? राज्य कर रहे थे। दोनों मिलके राज्य कर रहे थे, मतलब बोला तुम सामाजिक चीजों का ध्यान रखो, तुम धार्मिक चीजों का, दोनों ने मिलके क्या करना कर दिया शुरू? राज्य कर दिया, राज्य करना शुरू कर दिया। और जैसे ये कि कितनी उंगलियां हैं?
दस।
ऐसे रोमन राज्य ने जब ये स्थिति पैदा हो गई, आज जिसे हम यूरोप बोलते हैं, यूरोप, ऐसे इसको नाम दे दिया पवित्र रोमन राज्य। पवित्र मैंने धार्मिक, रोमन राज्य भी सामाजिक, सिविल एंड रिलीजियस का कॉम्बिनेशन होके ये राज्य चलना शुरू हो गया। और ये राज्य को 10 हिस्सों में बांट दिया, जैसे हम आज यूरोप बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा इसको बाद में ये इन्होंने जो नाम लिया वो तो नाम लिया क्रिश्चियन देश, जैसे ये राज्यों के नाम लेने जा रहा हूँ, ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, रोम एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, ऐसे 10 हिस्सों में क्या कर दिया? बांट दिया। और इन्होंने सारी धरती पे क्या किया? जैसे ब्रिटिश एम्पायर ने हम पे राज किया, कम से कम 80 देशों पे राज किया ब्रिटिश एम्पायर ने, पता है आपको? कॉमनवेल्थ गेम्स होती है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी दिल्ली में हुई थी, जो उसमें कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं? 80 और 80-85। वो सब देश, पता सारा वर्ल्ड क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कॉमनवेल्थ गेम सिर्फ वो हैं जिन पे ब्रिटिश ने राज्य किया है। ब्रिटिश एम्पायर ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, बहुत देशों पे राज्य किया, चाइना, जापान, सब सब पे।
चाइना पे ब्रिटिश
किया? ब्रिटिश एम्पायर ने इन पे राज्य किया। उधर अगर आप अमेरिका में चले जाओ, उधर स्पेनिश एम्पायर ने राज्य किया। इसलिए सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अमेरिका में पता कौन सी है? स्पेनिश। तो इस तरीके से ये जो चौथा राज्य था रोमन राज्य, उसका रूप बदला, वो बना पवित्र रोमन राज्य। सारी धरती पे उन्होंने क्या किया? राज्य किया। लेकिन लेकिन कहने को तो ये ईसाइयों का राज था। ये क्या, सारे देश ईसाई थे ना, क्रिश्चियन देश, लेकिन ये बहरूपिया राज था, ये प्रभु यीशु मसीह का राज्य नहीं था। वो जो पत्थर, जो छोटा पत्थर निकला, वो है प्रभु यीशु मसीह का राज्य, जो इन राज्य को खत्म करेगा और उसके बाद वो क्या होगा, सारी धरती पे फैल जाएगा। लेकिन ये तो असली राज्य नहीं थे ना, ये बहरूपिया, इसलिए इसको बोला मिट्टी और लोहा मिक्स। तो वो जो राज्य जो परमेश्वर की योजना के मुताबिक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं 44 और 45।
उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का राज,
हाँ अंडरलाइन कर लो, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का राज्य
उदय करेगा।
उन राजाओं के दिनों में, समझ रहे हो मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उस समय राज्य आएगा। एक पढ़ लो आगे,
उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ दिया जाएगा, वरना वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे पीतल मिट्टी चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, ना सपने में और ना उसके पल में कुछ संदेह है।
वो छोटा पत्थर जो बिना हाथों से, बिना हाथों से मतलब उसको बनाने वाला कोई इंसान नहीं है,
अपने आप
वो उधर से है, ठीक है। ये है वो छोटा पत्थर जो परमेश्वर, क्या बोला, छोटा पत्थर है परमेश्वर का राज्य जो दूसरे राज्य को खत्म करेगा और वो राज्य कभी ना नाश होगा और उस पे वो किसी को अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। तो ये है वो असली राज्य जिसके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे, और उसको स्थापित कब किया जाएगा, उन राजाओं के दिनों में। ये चाबी दी है मैंने आपको, ताला भी खोलना बाकी है, वो आज नहीं खोलूंगा मैं, खोलेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो वो हाथों से नहीं बनाया गया, मतलब उसका सेंटर जो है ना, वो इंसान का कोई वो नहीं है, इसका सेंटर परमेश्वर है, ठीक है। और वो पत्थर धीरे धीरे क्या करेगा, सारी धरती पे पहाड़ बन के राज्य करेगा, मतलब पहाड़ बन जाएगा, मतलब फैल जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये था वो दृश्य, ये था वो सपना जो नबूकदनेस्सर ने दिखाया कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कोई और धर्म बता रहा है इसके बारे में? नहीं, कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। तो चलो ये तो एक हो गया, अभी दूसरा सपना जो दानियल को खुद को दिखा था वो भी पढ़ते हैं हम। दानियल 7वां अध्याय उसका 1 और 2, समझ आ रहा है ना?
7वां अध्याय 1 और 2। बेबीलोन के राजा,
नहीं बेलशज्जर, बेबीलोन के राजा बेलशज्जर, हाँ
बेबीलोन के राजा बेलशज्जर के पहले वर्ष मैं दानियल ने पलंग पर सपना और दर्शन देखे, तब उसने वह सपना लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह सपना देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी।
महासागर पर चारों ओर से आंधी चलने लगी, समंदर पे चारों ओर से आंधी चलने लग गई, हाँ आगे।
तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से
भिन्न थे वो निकले, बोलता जब आंधी चली तो क्या निकला, चार बड़े बड़े जंतु एक दूसरे से अलग। इसका मतलब क्या है, दानियल का शुरू करता है अपने सपने का दृश्य के बारे में, बोलता है चार आकाश से क्या चल रही है, चार आंधियां। चार आंधियों का क्या मतलब है, आकाश का मतलब क्या है, हवा में आत्मिक राज्य, और ये चार बाजू जो चली इसका मतलब क्या है, ये धरती का राज्य, वो चार संगठन जो बताए ना,
अच्छा।
समाज,
धार्मिक संगठन,
धार्मिक
और
धार्मिकता, धर्म, समाज, पैसा, व्यापार और राजनीति, ये चार है वो वाजू हैं। जब चली तो क्या निकला, चार अलग अलग जंतु। ये चार अलग अलग जंतु क्या है, ये पढ़ लो दानियल 7:17 में।
उन चार बड़े बड़े जंतु का अर्थ चार राज्य हैं,
देखो
जो पृथ्वी पर
से निकलेंगे, जो पृथ्वी से क्या होंगे,
उदय
होंगे। तो ये जो समंदर उछलता हुआ समंदर है ना, इससे आंधी चली, उछलते हुए समंदर का मतलब पता क्या है, संसार। ये पढ़ लो यशाया 57:20, दूसरा संसार, कहने का मतलब ये तस्वीर है दूसरे संसार की। 57:20
परंतु दुष्ट तो लहराते हुए
समंदर के समान है
जो स्थिर नहीं रह सकता।
तो ये दुष्ट, दुष्ट का मतलब संसार, दूसरा संसार। तो दूसरे संसार में बोलता क्या होगा, प्रचंड वायु चलेगी, यानी आकाश से, आकाश मतलब आत्मिक राज्य, चार आंधियां लेके आएगा दुष्ट पे, यानी संसार पे। वो आंधियां क्या है, चार, ये संगठन जिससे ये धरती का राज्य चल रहा है। तो जब ये चलेगी तो बोलता है चार जंतु निकलेंगे अलग अलग तरह के, और ये जंतु हैं धरती के चार राज्य, है ना। तो फिर चलते हैं दानियल 7:4 में जी।
पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाऊ गिरते थे, मेरे देखते देखते उसके पांव के पर नीचे गए और पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया।
तो और पहला जंतु क्या है, शेर के समान, और उसको क्या है, पंख भी है। बोलता मैं देखता देखता क्या हुआ, पंख उखाड़ दिए गए। फिर से पढ़ो चार।
पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाऊ कैसे थे, मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया।
तो ये जंतु का मतलब क्या है, पहला राज्य, बाबुल राज्य,
नहीं, बाबुल राज्य
जो मैंने चार बोले ना, बाबुल, मेडो पर्शिया, ग्रीक और रोमन। तो पहला जो है वो है बाबुल राज्य, शेर के समान, लेकिन शेर को क्या लगे हैं, पंख। शेर मतलब क्या होता है, बड़ा शक्तिशाली, ताकतवर। तो बाबुल का राज्य बड़ा ताकतवर, नेबुकदनेज़ार का ताकतवर, बोला था ना नेबुकदनेज़ार के राज्य में तू तो, तेरे में तो बहुत महिमा दी गई है। और पंख, और के वो भी किसके, उकाब। उकाब क्या है, कब सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ता है, कौन, ईगल, उकाब है ना,
उकाब बोला जाए,
हाँ उकाब। तो उकाब के पंख भी दिए गए, मतलब ऊंचाई, महिमा, तेरे राज्य की महिमा बहुत ऊंची। हाँ, ये चिन्ह है, इन चिन्हों को समझना है। तू शक्तिशाली भी है और तेरे राज्य की महिमा बहुत ऊंची है, बहुत दूर दूर तक है। लेकिन क्या बोलता है, देखते देखते तेरे पंख, मतलब तेरी महिमा छीन ली गई।
अच्छा।
छीन ली गई, इसीलिए दानियल बोलता ना तेरे बाद एक और राज्य आएगा, मतलब जिससे तेरा राज्य छीन लिया गया। और बाद में क्या दिया गया, तुम्हें इंसान का सा दिल दिया गया। इसका मतलब क्या है, जब पता है, जब इससे राज छीना गया नेबुकदनेज़ार से, नेबुकदनेज़ार को ऐसे भयानक तजुर्बों से निकलना पड़ा, 7 तजुर्बों में से निकलना पड़ा, और 7 तजुर्बों के बाद नेबुकदनेज़ार जो बाबुल का राजा था, वो बड़ा नम्र और हम्बल बना, उसमें मन आया इंसान का सा। ये पढ़ लो बात, दानियल 4:34-37। आप पांच में हैं आप सिस्टर।
उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखों स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो किचड़ हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा। उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है।
देखो ये नबूकदनेस्सर बोल रहा है।
पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज में स्थिर हो गया।
देखो
और मेरी ओर अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ क्योंकि उसके सब सच्चे काम और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है।
नबूकदनेस्सर भी घमंड से करता था। नबूकदनेस्सर ने क्या किया था पता, एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई। उसको ऐसे बहुत बहुत बड़ी मूर्ति और बहुत एरिया में उसको रखा, बोलता सब इसको वो करो दंडवत करो। हाँ तो तीन लोगों ने नहीं किया था, तीनों को उठा के भट्टी में फेंक दिया। जिन्होंने फेंका वो खुद मर गए, इतनी हीट थी। चौथा बंदा भी उनके साथ है, तब बोलता तुम्हारा परमेश्वर वाकई सच है। ठीक है तो यही नबूकदनेस्सर देखो क्या बोल रहा है अभी, इसको किसका हृदय दिया गया, इंसान का सा हृदय दिया गया। तो ये है वो पहला राज्य बाबुल राज्य। बाबुल राज्य शेर का सा और पंख दिए गए, तो इसलिए ये है पहला राज्य बाबुल। दूसरा जंतु कौन सा था वो पढ़ते हैं दानियल 7:5।
फिर उसने एक और जंतु देखा जो रीच के समान था।
रीच अभी ये कौन सा है, रीच। हाँ
और एक पंजर के बाल उठा हुआ था,
एक तरफ से उठा हुआ था
और उसके मुंह में दांतों के बीच तीन पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे उठ और बहुत सारा मांस खा। इसके बाद मैंने
बस ये इसको समझ ले अभी दूसरे को। दूसरा ये है दूसरा राज्य, इसको क्या चिन्ह दिए हैं, बोलता है ये रीच के समान था, एक तरफ से उठा हुआ था और इसके मुंह में तीन पसलियां थी। तो ये तस्वीर है दूसरे राज्य की, मीटो पर्शिया। ये मीटो पर्शिया राज दो लोगों का था, मीदी और पर्शी। मीदी पर्शी दोनों मिलके एक राज शुरू किया और इनको चिन्ह रीच का चिन्ह पता क्यों दिया गया, भालू का चिन्ह पता क्यों दिया। भालू का तरीका क्या होता मारने का,
वो इंसान को बताते हैं गिराकर पेट चाट चाट के मारता है, भी चाट चाट के।
भालू बोलते भालू जब आ गया तो अपना क्या रोक लो, सांस रोक के लेट जाओ तो भालू हमें नहीं मारेगा। तो भालू का तरीका पता क्या होता है, भालू आपको पकड़ लेगा, आपका सांस क्या कर देगा, घूंट देगा। उसका यही काम होता है सांस को घूंट देना। तो ये मीटो पर्शिया अंपायर का लड़ाई का तरीका पता क्या होता था, मान लो या इस गांव में अटैक करना है तो पता क्या करेगा, सबसे पहले इस गांव को बाहर से घेर लेगा ताकि इस गांव में ना तो कोई अंदर जाए ना बाहर आए, उसकी सप्लाई बंद कर देनी, खाना वाना हथियार सब 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 बंद घेर लिया। जब धीरे धीरे अंदर का सब खत्म हो गया तब अटैक करना,
निर्बल बना के अटैक।
यस, ये होता था उनका लड़ाई अटैक करने का तरीका, इसलिए इसको चिन्ह दिया गया भालू का चिन्ह, कि भालू जैसे सांप घोट देता है ना, ऐसे ये सीज कर देते थे। एक तरफ से उठा हुआ मतलब इसमें इंबैलेंस था, ऐसा नहीं था कि मीजी भी उतने थे पर्शिया भी इतने थे, नहीं, एक ज्यादा था एक कम था। इसके मुंह में तीन पसलियां थी, तीन पसलियों का मतलब पता क्या है, तीन राज्य पे इन्होंने जय प्राप्त की थी, एक तो मिस्र, एक तो लीदिया, एक तो बाबुल।
लीदिया
लीदियन और बाबुल, तीनों राज्य को ये निगल गए थे। इसको क्या बोला था, इसलिए उत और बहुत सा मांस खा का मतलब क्या है, वो शेर है, बाबुल राज्य क्या है, शेर का राज्य है, हाँ ले वो तेरा हुआ, मतलब उसको अधिकार मिल गया बाबुल राज्य पे जय प्राप्त करने का, तो परमेश्वर की योजना के तहत। ठीक है, तो ये बात पढ़ लो, दानियल बाबुल राज्य कैसे बटा, दानियल 5:28, दानियल 5:28,
परेश अर्थात तेरा राज्य पार्सल मादियों और फारसियों के को दिया गया है।
देखो बाबुल राज्य को बोला तेरा राज्य बांटकर मीदियों और पर्शियों को दिया गया है, पारसियों को दिया गया है। तो इसलिए ये जो दूसरा जंतु है ये है तस्वीर किसकी, दूसरे राज्य की, मीदो पर्शिया राज्य, और जो चिन्ह दिए वो चिन्ह आपको आशा करता हूँ समझ आ गए। रिच एक तरफ से ऊंचा हुआ और तीन पसलियां, तीन राज्य। उसके बाद तीसरा जंतु जो निकलता है वो कौन सा है, दानियल 7, एक तरफ 7 में हाथ रखो, 6वां वचन,
7:6। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया।
तो ये चिन्ह दिया गया है ग्रीक राज्य, ग्रीक राज्य को क्या बोला, चीते के समान 4 पंख और 4 ही सर, 4 पंख और 4 ही सर। तो चीता, चीते में क्या खासियत होती है, चीता जाना जाता है उसकी स्पीड के लिए, बहुत तेज है। बोलते चीता लगातार 90 मिनट नहीं दौड़ सकता, 90 सेकंड नहीं, ऐसा कुछ 90 सेकंड या पता नहीं कितना समय, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए उसकी हीट इतनी हो जाएगी वो जल जाएगा, खुद ही जल जाएगा, इतनी तेज दौड़ता है चीता। और इस राज्य को नाम दिया गया है चीता, चीता मतलब कहने का मतलब इसलिए दिया गया कि इन्होंने बड़ी तेजी से अपना राज स्थापित किया, बहुत तेजी से, इसलिए इसको चिन्ह दिया गया चीते का, ग्रीक राज्य को। और ये पता है आपको ये कौन है, ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर जो था ना बहुत बड़ा राजा था ग्रीक राज्य, ग्रीक राज्य जिसने बहुत तेजी से अपना राज्य स्थापित किया था। और इस पे 4 पंख, 4 पंख का मतलब है ये अलेक्जेंडर जो था ये राज्य इतनी तेजी से स्थापित करने का कारण था इसके 4 प्रिंसिपल जनरल, 4 प्रिंसिपल जनरल, 4 प्रिंसिपल जनरल, ठीक है, जनरल हैं पंख, और वो हेड हैं वो खुद 4 प्रिंसिपल जो जनरल थे ना जिन्होंने ये किया। मतलब कहने का मतलब जो ग्रीक एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने स्थापित की चार पंखों की, मतलब चार ताकतों की वजह से वो थे जनरल, और वो हेड जो है उसके चार वो यही है प्रिंसिपल जनरल। एक तो जनरल कैसेंडर, एक तो जनरल लिसमेकस, एक तो जनरल सेलेसिकियस नेक्टर, और एक तो टॉलमी। टॉलमी ने किया इजिप्ट एंड पैलेस्टाइन पे कंट्रोल, सेलोटेकस नेक्टर ने मिडल ईस्ट में मेसोपोटामिया इराक वगैरह, लिसोकोमैकस एशिया में, और थ्रेस और मैकोडोनिया उधर यूरोप और ग्रीस में। तो ऐसे ये चार जनरल हैं, चार सर, और चार जनरलों की ताकत है चार पंख, और जो ग्रीक एम्पायर है वो है चीता, और इनका मुख्य था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये है तीसरा राज्य, तीसरा जनपद। इसके बाद चौथा देखते हैं, अभी ये बड़ा भयानक सा है, सात का सात।
फिर इसके बाद मैंने सपने में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थ्य है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके दस सींग हैं।
ये बड़ा भयानक है, दांत लोहे के हैं और दस सींग हैं, ठीक है। तो ये बड़ा भयानक जंतु कौन है? ये बाकी जंतुओं से बड़ा भिन्न था। ये है रोमन राज्य, दांत लोहे के। लोहे का मतलब ये जो तलवारों वगैरह की लड़ाई शुरू हुई थी, ये रोमन लेके आए थे हथियार, तो लोहा इसको इसीलिए बोला गया कि इनका लड़ाई का तरीका लोहे के हथियारों से था, तलवार ये वो सब, बर्छे ये वो सब, ठीक है। तो इनकी जो ताकत थी, मिलिट्री पावर रोम की, बहुत बढ़िया थी, बहुत शक्तिशाली थी। और इसके कितने दांत थे? दस। दस दांत मतलब क्या, क्या मतलब है दांतों, ये जंतु दांतों से अटैक करने का तरीका, कितना अटैक करने का तरीका इनका क्या था? लोहे के वेपन। और इसके दस क्या थे? सिंह थे। मतलब एक राजा के अंदर ये दस बंटवारे हो गए थे। एक ऊपर राजा था, उसने उसको दस भाग में बांट, जैसे इंडिया एक स्टेट है लेकिन उसके अंडर अलग अलग स्टेट है, ऐसे ही एक राजा ने दस छोटे राज्य स्थापित कर दिए, उन सब पे राज्य। तो वो दस के दस क्या करते थे? राज्य करते थे। तो ये जो हेरोदेस था ना, हेरोदेस वही दस में से एक वो था, ठीक है। तो फिर क्या देखता है, आगे पढ़ते हैं आठ में।
मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला।
अभी उन दस सींगों के बीच एक छोटा सा सींग निकला,
और उसके बल से उसने उन पहले सींगों में से
तीन को उखाड़ दिया। हाँ।
फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी
आंखें
और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है
सींग में। देखो तो इसका मतलब क्या है, मैं बोलता देखते देखते क्या देखता हूँ, एक छोटा सा सींग निकलता है। क्या बोलता है, जब रोमन राज्य, मैंने बोला ना रोमन राज्य ने बाद में रूप बदला, रूप क्या बदला कि धार्मिक राज्य, धार्मिक बातों का न्याय भी इस राज्य के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो क्या बोलता है, एक छोटा सिंह निकला, छोटा सिंह मतलब एक और छोटा राज्य निकला, उसने तीन राज्य को क्या कर दिया, उखाड़ दिया। वो तीन राज्य कौन से थे? हेरुली, ईस्टर्न एक्सेटे एंड ऑस्ट्रोगोथ। ये तीनों को एंड कर दिया छोटे सिंह ने। ये छोटा सिंह पता कौन था? ये निकला रोम से, ये था रोम का बिशप। रोम का बिशप, क्योंकि ये बोलता बाकियों से क्या था, अलग था। और इसको क्या दी गई? आंखें, और इसका मुंह भी था जो बड़ी बड़ी बातें बोलता था। तो मतलब क्या कि बड़े ही चालाक और कुटिल तरीके से रोम के बिशप ने रोमन राज्य में सत्ता हासिल की और बोलना शुरू कर दिया कि हम परमेश्वर ने इस धरती का राज्य का अधिकार हमें दिया है। इसीलिए तो वो राजाओं की तरह उसको ट्रीट करते हैं, पोप को आज देखो तो अगर ठीक है। तब जन्म हुआ ये पेपेसी यानी पोप के संगठन का। तो पोप एक राजा की तरह राजा बनके धार्मिक और सामाजिक बातों को चलाना शुरू कर दिया, यानी चर्च ने राज्य करना शुरू कर दिया। ये था वो छोटा सिंह। और ये छोटा सिंह ऐसा विभिन्न बन गया कि 799 में एक नया नाम दे दिया रोमन राज्य को, पवित्र रोमन राज्य। और 799 से 1799 तक इन्होंने बोला वो जो राज्य प्रकाशित वाक्य में 1000 साल का राज्य लिखा है ना, प्रभु का राज्य, वो हम स्थापित करें। उसमें इन्होंने बहुत अत्याचार किया, बहुत अत्याचार, मैं बताऊंगा क्या क्या किया। तो कलीसिया यानी चर्च प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ही क्या कर दी, राज्य करना शुरू कर दी, जो परमेश्वर की योजना के तहत नहीं था। फिर क्या देखता है, फिर भविष्यवाणी में और आगे बढ़ते हैं, 7:9।
जी, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए
हाँ,
और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ।
अति प्राचीन, देखो कोई बहुत पुराना बैठ रहा है हाँ।
उसका वस्त्र हिम का सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन तरीके थे।
ये पता कौन है,
परमेश्वर,
ये पिता परमेश्वर।
उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग जैसे दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे।
तो ये कहने का मतलब कि परमेश्वर सिंहासन पे, सिंहासन रखे गए का मतलब क्या, परमेश्वर बैठे क्या करने के लिए, न्याय करने के लिए। और न्याय क्या किया, 12वें वचन में पढ़ो,
तेज जंतुओं का अधिकार ले लिया गया परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया।
अधिकार तो ले लिया लेकिन छोड़ दिया थोड़ी समय के लिए, ठीक है। तो ये जंतुओं से अधिकार ले लिया गया और लेके किसको देना था, आगे पढ़ लो 13।
मैंने रात में सपने में देखा और देखो मनुष्य के संतान का कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा।
कौन ये, कौन, यीशु मसीह। यीशु मसीह को किसके पास लेके जाया जा रहा है, पिता परमेश्वर के पास लेके जाया जा रहा है। और आगे पढ़ लो,
और उसको वे उसके समीप लाए।
ये ध्यान, ये नोट कर लो भी, प्रभु पिता परमेश्वर बैठे हैं और प्रभु यीशु मसीह सामने लेके आए प्रभु यीशु मसीह को हाँ। आगे,
उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो।
देखो,
और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी है।
तो प्रभु यीशु मसीह को मिल रहा है एक महिमा, एक प्रताप, एक राज्य। सारी कौम, सारे देशों पे राज्य, सारे देश उसकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ये राज्य सदा का राज्य होगा, इसका अंत नहीं होगा। सिस्टर को जगाओ, सिस्टर सो रहे हैं। तो नहीं, अगर ज्यादा है तो मैं रुक दूं यहाँ पे। तो उसके बाद ये है 5वां राज्य। कौन सा, वो चारों राज्य खत्म हो जाएंगे लेकिन ये 5वां राज्य खत्म नहीं होगा। ये है वो 5वां राज्य जिसके बारे में वायदा किया गया है। और इतना ही नहीं, 7:27 में पढ़ो, 7:27 में,
7:27
में, जी जी,
सब राज्य और कर्ता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी
पवित्र लोग यानी संत बोला, सेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई यानी ये है कलीसिया, वही राज्य जो प्रभु को मिला था उसमें हिस्सेदारी मिली किसको? कलीसिया को। आओ तुम भी हमारे साथ क्या करो, ये होगा परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर ये राज्य शेयर करेगा प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उसके संतों के साथ, उसके संतों के साथ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लूका 22 और 29 में पढ़ लो क्या बोलते हैं।
लूका 22 29
जी,
और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ।
देखो जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य दिया, मुझे दिया, वैसे मैं तुम्हारे लिए भी एक राज्य ठहराता हूँ। ये है वो परमेश्वर का राज्य। तब जाके ये प्रार्थना पूरी होगी जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, तेरा राज्य है तेरी मर्जी जिस तरह। तो ये देखो धरती पे आने वाला है ये राज्य, ठीक है। अभी ये कलीसिया के राज्य करने का समय नहीं है। अभी अगर हम बोले कि हम राज्य करेंगे, नहीं, हमें राज्य या तो आप सोच लो आपको राज्य प्रभु यीशु मसीह के साथ करना है या इस संसार के साथ करना है। लेकिन आज आज पास्टर लोग, आज ये सारे ईसाई क्या सोचते हैं, हम राज करना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो राजनीति से अभी हाथ मिलाते हैं। जो करप्ट, जो शैतान के द्वारा चलाया हुआ ये संगठन है, इनके साथ क्या मिला लेते हैं? अगर इनके पास सच्चाई हो तो ऐसा करेंगे? इनको तो परमेश्वर ने बर्बाद करना है, नाश करना है, लेकिन हम अगर जाके हाथ मिलाएं तो परमेश्वर की नजर में हम अच्छे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे आज क्या हो रहा है, आज यहाँ का तो मुझे पता नहीं, यहाँ भी होना शुरू हो गया। साउथ में क्या हो रहा है, एक तरफ गणेश की फोटो लगी है एक ही बैनर पे, एक तरफ यीशु मसीह की सलीब लगी है, एक तरफ वो साउथ के कोई जो भी बाबा वगैरह है उनकी साईं बाबा भी लगा हुआ है, सब सब लगा के सब बोलते हैं सब तो एक है। हम आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, ये शोभा यात्रा निकलती है जो वाल्मीकि को मानने वाले हैं क्रिश्चियन उनमें जाके मिलते हैं, वाल्मीकि क्रिश्चियन वाले में आते हैं, ये क्या चल रहा है?
ये अपना इनका खुद का राज चल रहा है, परमेश्वर का राज नहीं है,
ये अपनी इच्छा चल रही है। ये अभी समय नहीं है कलीसिया के राज्य करने का। कलीसिया कब राज्य करेगी? जब असली राजा आएगा। तो कलीसिया का ये अब का समय क्या है ये पढ़ लो, जो मैंने अभी आपको आते वक्त बात बोली ना, हमें पकड़ पकड़ मारेंगे ये बात होगी, ये पढ़ लो। दूसरा तिमोथी 2:12, जी
यदि हम धीरज से कहते रहेंगे
हाँ तो
के साथ राज्य भी करेंगे।
इसका मतलब समझ, यदि तो, यदि तो, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन धीरज से सहना हम नहीं सह सकते, हम नहीं सह सकते, सीधा बोल देते परमेश्वर हमें छुड़ा ले, बस अभी नहीं बस। और आगे पढ़ लो प्रेरितों के काम 14:22, प्रेरितों के काम 14:22।
और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा।
बहुत कलेश उठाना पड़ेगा जो कभी सोचा भी नहीं वो भी हो जाएगा, ऐसा कलेश। प्रकाशित वाक्य 3:21,
तीन का जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया।
जो जय पाएगा, जो जय पाएगा,
जय कौन पाएगा? जो
बहुत लोग इस वचन को गलत अर्थ निकाल कर, तो कलीसिया ने तो राज करना शुरू कर दिया प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही। हर कोई अपनी कलीसिया बनाता है, उस पर राज्य करता है। तो ये जो बात है ये वही मिट्टी के समान है जिसका मैंने बोला बहरूपिया,
डुप्लीकेट।
लेकिन प्रभु परमेश्वर का असली राज्य तो आएगा कब? जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है, और दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे उसके कलीसिया। कलीसिया धरती पे नहीं रहेगी, कलीसिया पूरी हो जाएगी उसके बाद। ये होगा मत्ती 25 का 31 पढ़ लो।
जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा।
आगे उसके पवित्र दूत भी लिखा है ना,
और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और
नहीं, फिर से पढ़ो।
अच्छा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे।
उसके साथ सब स्वर्गदूत, होली एंजल। ये कौन है? ये कलीसिया। कलीसिया स्वर्ग में पहुंच चुकी होगी और प्रभु के साथ राज्य करने आएगी। तो
वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा।
तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये है वो पांचवा राज्य। अभी हम कहाँ पे हैं इस भविष्यवाणी में? आज हम कोई राजा देखते हैं? कोई राजाओं का राज है? तो इसका क्या मतलब है? हमने क्या पढ़ा था? उन राजाओं के दिनों में। लेकिन आज कोई राजा दिखता है हमें? ये राज्य सारे खत्म हो चुके हैं। और अगर कहीं कोई है भी, नेपाल का थोड़े दो तीन साल हो गए, नेपाल का था, वो भी
अभी उसको भी कोई नहीं मार रहा, अभी
खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम अब ये संसार के राज्य से
अलग होने वाले,
संसार के राज्य का अंत, और दरवाजे पे बैठे हैं पांचवें राज्य के। बस थोड़ा समय है, और मैं आपको साल भी बता दूंगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय और। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, जल्दी हमारी जल्द क्लासेस जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। तो बहुत जल्दी इस धरती पे राज्य स्थापित होने वाला है परमेश्वर का। लेकिन हमारा मकसद तो क्या है? आज हम जो सच्चाई में चल रहे हैं उनका मकसद है प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया बनना। नाम की नहीं, सच्ची। पिछली क्लास में हमने देखा ना, एक झूठी कलीसिया है, एक सच्ची कलीसिया है। ठीक है, तो ये सारे तो राज्य तो खत्म हो गए हैं, और बहुत जल्दी हम सिर्फ चौखट पे बैठे हुए हैं पांचवें राज्य का। ठीक है, जो आएगा जिसका राजा होगा प्रभु यीशु मसीह, और उसके साथ होगी उसकी कलीसिया। तो आज क्या हो रहा है? भजन संहिता 110 का 5 और 6 पढ़ लो।
एक सौ दस का पांच छ। प्रभु तेरी दाहिने ओर होकर अपने क्रोध के लिए राजा को चूर चूर कर देगा।
देखा, चूर चूर हो रहे, पिछले 100 साल में आप देख लो क्या क्या हुआ है। राजाओं को चूर चूर किया, ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गई, पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद सब खत्म हो गया ना, चूर चूर करेगा आगे,
जाति जाति में न्याय भूमि शवों से भर जाएगी।
देखा पिछले 75 साल में कितनी लड़ाइयां हुई, पिछले 100 साल में पहला संसार युद्ध हुआ, दूसरा संसार युद्ध हुआ, ईरान इराक की लड़ाई हुई, इंडिया की 2 लड़ाइयां हुई है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ लड़ाई हुई, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, वियतनाम की लड़ाई हुई, कोरिया की लड़ाई हुई, कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। लोथों से भर देगा परमेश्वर, ये चल रहा है अभी। हाँ,
लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा।
तो परमेश्वर का राज्य स्थापित होना शुरू हो चुका है, चुका है, होने वाला नहीं है, चुका है। और पता लोगों को पता कब लगेगा, अरे हम तो परमेश्वर के राज्य में हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा बोला ना, ऐसा होगा। क्योंकि उन राजाओं को खत्म करने वाला कौन है, वो छोटा पत्थर, वो कब, जो मैं आपको बताऊंगा डेट के साथ बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपको पता है गवर्नमेंट के तरीके भी बदल गए, मतलब कि पहले गवर्नमेंट कैसी होती थी, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म पता किसकी होती थी, चाइना रशिया और यूरोप के, हाँ कम्युनिज्म की सरकार चलती थी पहले, कि ऐसे हमारी सोसाइटी का उद्धार ये वो, लेकिन वो खत्म हुई। रशिया के कितने टुकड़े हुए, रशिया के टूट गया, ठीक है। वो कम्युनिज्म आज चाइना में है, लेकिन इतनी सक्सेसफुल गवर्नमेंट नहीं है कम्युनिज्म। उसके बाद आया डेमोक्रेसी, लोगों की सरकार लोगों के लिए, वो खुशहाली लेके आई। आज हमारी डेमोक्रेसी चल रही है ना, क्या चल रहा है, बहुत गंदा है वो डेमोक्रेसी का भी। तो इसके लिए एक भविष्यवाणी लिखी, भविष्यवाणी पुराने नियम में परमेश्वर क्या बोल रहा है, अमोस 5:19।
जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हार टेके और सांप उसको डसे।
यह है तीन तरह की सरकार है। पहले बोलता शेर मिले, शेर का मतलब पता क्या है, वो राजा एक होता था और वो राज्य करता था प्रजा, उससे भागे तो भालू मिले, भालू मतलब कम्युनिज्म, सोसाइटी का राज्य, हमारा अपना राज्य, उससे भी भागे तो घर में गए, घर में दीवार पर हाथ, हाँ अब बचे, वहां पे भी क्या आया और कांटा। घर में का मतलब अपनी सरकार, अपने लोग, डेमोक्रेसी, जो लोगों की सरकार जिसे बोलते हैं।
ये जो आपको सिंबल्स
में शैतान भी बोल सकते हैं ना, यस यस, वही मतलब शैतान चलाए, शैतान उसमें भी आके क्या करेगा, काटेगा। तो मतलब किसी भी तरह की सरकार, चाहे वो राजाओं की थी, चाहे कम्युनिज्म आई, चाहे डेमोक्रेसी आई, किसी ने भी हमारी मुश्किलों का, खुशहाली का हल नहीं है। ये हल किसके पास है, परमेश्वर के पास। हगै 2:7 पढ़ लो, हगै पुराने नियम में ही है, हगै की किताब, ये हाँ हबकू के बाद होगी, इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में हगे दो सात दो सात जी
मैं सारी जातियों को संपर्क पाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा।
परमेश्वर ये मन भावना लिखा है लेकिन इच्छा लिखा है, सारे देशों की इच्छा, सारे जातियों की इच्छा, परमेश्वर शांति चाहिए। आज भी सब क्या बातें हो रही हैं कहीं पर भी, पीस पीस, इंडिया पाकिस्तान के साथ पीस, ये पीस वो पीस, पीस पीस, शांति शांति शांति, लेकिन मिल रही है नहीं। परमेश्वर भेजेगा, बोलता मैं अपने भवन को कैसे भर दूंगा महिमा से। ये कब होगा? जब परमेश्वर का राज्य आएगा। तो परमेश्वर का राज्य ही उत्तर है शांति का, खुशहाली का और जीवन का। ये सब फेल हो चुका है, अब इसका अंत बहुत नजदीक है। चलो ये है परमेश्वर के राज्य के बारे में। अब ले लेते हैं थोड़ी सी झलकियां, परमेश्वर के राज्य की झलकियां देखनी है तो चलो उस बहुत सुंदर राज्य की झलकियां देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 का 2 और 3, शैतान और उसका जो प्रभाव है उसको बांध दिया जाएगा। पढ़ो।
उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध लिया और उस अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो जब शैतान ही नहीं होगा तो परमेश्वर का तीसरे राज्य में पूरी शांति सब कुछ होगा परमेश्वर का।
तो 1000 वर्ष के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा? बांध दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो एक झलकी हुई, और क्या होगा? सारे लोगों की समझदारी के आंखें और कान खोल दिए जाएंगे। यशाया 29:18।
अच्छा
29:18
उस समय बहरे पुत्र की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे।
बहरे मतलब कहने का परमेश्वर के राज्य में ये सब लोग जो आज विश्वास नहीं करते उनको भी वचन सुनना शुरू हो जाएगा, मतलब वो भी स्वीकार कर लेंगे। अंधे, अंधे का मतलब क्या है? जो ये सारा संसार शैतान ने अंधे किया हुआ है, ये भी देखना शुरू कर देंगे। मतलब परमेश्वर के राज्य में सच्चाई प्रकट होनी, परमेश्वर का वचन प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आगे परमेश्वर का ज्ञान पूरी धरती पे भर जाएगा। हबकूक 2:14।
क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है।
परमेश्वर का ज्ञान पूरी पृथ्वी पे, सारे देश सारी जातियां अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास जाया करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। भजन संहिता 22:27-28।
सब्जी के सब दूर दूर देशों के लोग इसको ग्रहण करेंगे और इसकी ओर चलेंगे और जाति जाति के सब फूल तेरे सामने दंडवत करेंगे।
आगे
क्योंकि राज्य यहोवा से ही है, यहोवा का ही है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है।
देखो
सब्जी के सब
बस 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 ठीक है। तो सब लोग सब देश सब जातियां परमेश्वर की आज्ञाकारी हो जाएंगे, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। ये जो आजकल लड़ाइयाँ है ना ये खत्म हो जाएंगी। मीका 4:3 मीका 4:3 3
वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीस कर हल के पाल और अपने भालों से मुठियां बनाएंगे, तब एक जाति दूसरी जाति के दूर तलवार फिर न चलाएगी।
ये लड़ाइयाँ आगे
और लोग आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर से वृद्ध करने जैसा करेंगे।
देखो युद्ध युद्ध नहीं सीखेंगे, आर्मी खत्म हो जाएगी दादा, ये डिफेंस डिफेंस खत्म हो जाएगा, मुर्दे वापस आना शुरू हो जाएंगे। यशाया 35:10
यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा,
खत्म हो जाएगा। बुढ़ापा बूढ़ा होना, बुढ़ापे से लोग जवानी में वापस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स बुढ़ापे में हो रहे, जब आएंगे तो जवानी के दिन वापस आने शुरू हो जाएंगे। ये बात पढ़ लो अय्यूब 33:25 अय्यूब भजन संहिता से पहले
25 उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए
और वह
उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए।
उसकी जवानी के दिन क्या हो गए,
फिर लौट आए।
ये ऐसा होगा, बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, संपूर्ण मनुष्य बूढ़ा नहीं होता है, ठीक है। घर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेंट पे रहना, हर एक के पास अपना अपना घर होगा। ये शायद 65:21 अपना घर भी होगा, अपना किता भी होगा, व्यापार भी होगा।
वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बाड़ियां लगाकर उनका फल खाएंगे।
दाख की बाड़ियां मतलब हर एक का अपना किता होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ वो अमीर हो रहा है मैं, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ये बीमारियां है ना जो, ये खत्म हो जाएंगी। फिर ना हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत, ना डॉक्टर की ज़रूरत, ना हॉस्पिटल की ज़रूरत, ना दवाइयों की ज़रूरत, ना इंजेक्शन की ज़रूरत। यशाया 33:24 में पढ़ लिया।
कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा।
रोगी कोई रहेगा ही नहीं, ना फिर दवाई, ना मेडिसिन, ना डॉक्टर, ना हॉस्पिटल। ये जो मारुथल है ना, मारुथल ग्रीनरी में बदल जाएगा। ये पढ़ लो, यशाया 35:7।
मृत चरणा तल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते टूटेंगे, और जिस स्थान में प्यार बैठा करते थे उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे।
मारुथल में घास ये सब मिलेगा। जंगली जानवर जो आज बड़े डरावने जैसे शेर सांप ये भयानक है ना, ये दोस्त बन जाएंगे। ये शाया 11:6-8 कर लो। ग्यारह का 6-8
तब भेड़िए भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पला पूछा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चलेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह के बल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेज के दिल पर खोलेगा, करेज के दिल पर खोलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के दिल में हाथ डालेगा।
कालेश्वर गेरा आदमी होगा। ये जो जंगली जानवर हैं ये दोस्त बन जाएंगे। मृत्यु दुख आंसू सब खत्म कर दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:4। जी
वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें चाहती रहेगी।
और तब धरती की स्थिति क्या होगी? शांति की। और तब गाएंगे सब आनंद से। यशाया 14:7।
अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है,
अब मिला है विश्राम। हाँ, और वह चैन से है। हाँ।
लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं, सनोवर और लवालोन के देवता भी उस पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया।
देखो तो अब हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। वाह परमेश्वर, इतना सुंदर राज्य, जल्दी जल्दी आए तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। आमीन। हमारी क्लास का तो अंत हो गया है, लेकिन परमेश्वर के राज्य का कोई अंत नहीं है।